कर सकते हैं। होता यह है, हम जरा सा विचार करें और थोड़ा सा, जैसा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी विचार करके हमें बता रहे हैं। हम देखते हैं वर्तमान में कि एक व्यक्ति करता है लेकिन उसका फल कई लोगों को भोगना पड़ता है। हमने तो अभी तक यही जाना था कि जो जैसा कृत करेगा उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा, उसे ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को काहे को उसका किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे अपने भावों से कर्म निर्धारित होगा। अगर कोई एक व्यक्ति बाहर एक खेल दिखा रहा है जिसमें कि वो दो जानवरों को जो कि जन्मजात बैरी हैं, नेवला और सर्प, उनको लड़वा रहा है, कर तो एक व्यक्ति करत रहा है लेकिन बाकी सारा हुजूम उसको देखने के लिए खड़ा है और वह कह रहा है कि ये जीत जाए या कि ये हार जाए, ऐसा वह उसका समर्थन भी कर रहा है। तो मानिएगा एक व्यक्ति के द्वारा किया गया वह कृत्य कितने लोगों को भोगना पड़ेगा जो जो वहां पर शामिल है। ठीक इसी तरह परिवार में एक व्यक्ति सारे परिवार की सुख सुविधाओं की सामग्री जुटाने के लिए और दुकान पर बैठ करके जो भी कृत्य करता है उस सब का समर्थन परिवारजन करते हैं, उसका फल उन सबको भी भोगना पड़ेगा, उनके अपने परिणामों का फल भोगना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका समर्थन किया है। और अगर आप उस कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं तो बात जुदी है, ऐसा तो कोई विरला ही होगा। एक मां थी ऐसी जिसने कि अपना शरीर का सारा जेवर बेच करके, क्योंकि पिता नहीं रहे और कोई आगे पीछे नहीं था, बेटा मात्र था, तो बेटे को काम से लगाने के लिए अपना सारा जेवर बेच करके, अपनी सारी संपत्ति बेच करके और एक ट्रक खरीदवा दिया ताकि वो ट्रक का काम कर सके। और एक दिन उसे डाउट हुआ कि उसके बेटे ने ये ट्रक में और क्या काम शुरू किया है जिससे कि उसको अपार संपदा मिल रही है, इतनी संपदा तो ट्रक का काम करने में मिल नहीं सकती। बेटे से पूछा, उसने कहा तुम्हें क्या करना मां, इतनी संपत्ति आ रही है, लाखों रुपए मुझे मिलते हैं, तुम ये मत पूछो कि मैं क्या करता हूं, ट्रक से ढुलाई का काम करता हूं जो ट्रक से किया जाता है। बेटा भोजन करने बिठाल दिया मां ने और चुपचाप ट्रक पर चढ़ करके पहुंची और सारे कागजात टटोले, तब उसमें मिला कि यह ट्रक तो इतनी गायों को यहां से लेकर के स्लॉटर हाउस ले जाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला है। मां ने अनशन ठान लिया, आज से मैं वो भोजन ही नहीं करूंगी जो कि तुम कमा करके लाए हो, मैं मरण स्वीकार करती हूं लेकिन ये वाला भोजन नहीं करूंगी। और तब तक भोजन नहीं किया जब तक कि बेटे ने वो धंधा नहीं बदल दिया। ऐसे लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा उसका फल। बाकी अगर कोई एक करता है और सब उसका समर्थन करते हैं तो मानिएगा उन अपने भावों जिनसे हमने समर्थन किया है उन परिणामों की वजह से हमें भी उसका फल भोगना पड़ेगा। देखने में तो यह आता है कि मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। नहीं, हमने जितना जितना किसी और के पाप का समर्थन किया है वो सब हमारे मत्थे उसका फल भोगने के लिए आएगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। घबराहट तो इतने में होने लगी है ना, अब क्या होगा, अभी तक जो हुआ है वही होगा, जो हो रहा है वही होगा, अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो वही होगा। अगर हम आज भी समझ जाएं और परिवर्तन कर लें तो जो हम चाहेंगे वो होगा, जो होना होगा वो नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। ये हमारे भीतर सामर्थ्य है लेकिन हम क्या कहें, हम तो ये सोच लेते हैं कि वो जो हो रहा है वो ही होना था इसलिए वो हो रहा है। नहीं, मैंने निर्धारित किया था कि क्या होगा इसलिए हो रहा है, और मैं निर्धारित करूंगा कि अब ये नहीं होगा ये होगा तो ये वही होगा। ये कोई और मेरे लिए निर्धारित नहीं करता है, मैं अपने लिए खुद निर्धारित करता हूं। अगर मैंने अपने लिए हिंसक जीवन पद्धति के लिए कर्म बांधे हैं तो मैं हिंसक जीवन पद्धति ही जीऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो आज अपनी पद्धति को बदल करके अहिंसक जीवन पद्धति अपना लूं तो मेरे शेष जीवन में भी मैं अहिंसक ही जीवन पद्धति अपना सकूंगा। यह साहस हमें करना पड़ेगा। मजा यह है कि कर्ता अभी तो एक था, अब कर्ते अनेक हैं, भोगना एक को पड़ता है। कैसे, एक समय सारजी में गाथा आती है, जिसका भावार्थ है कि पगरण चेष्टा मवि, कोई एक चेष्टा करता है और उसकी वह चेष्टा उसके लिए तो हानिकारक होती ही है, लेकिन उसकी उस चेष्टा के द्वारा जो उसमें सहयोगी हैं उन सब की हानि नहीं, सिर्फ उसी की हानि होती। कस्तवी पायरणोक्ति, करने वाला कोई और होता है लेकिन जिसके निमित्त से वह किया जा रहा है उसके लिए ही उसका पूरा फल भोगना पड़ता है। शादी ब्याह में यह बात देखने में आता है। दूल्हे राजा बढ़िया कमरे में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते वे, ना उन्हें करने दिया जाता है, क्योंकि अब आप दूल्हा हैं या दुल्हन हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए सब लोग करेंगे। सब लोग कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं नहीं, उनका ब्याह हो रहा है इसलिए कर रहे हैं, उनके ब्याह के लिए कर रहे हैं। सारा फल किसके लिए जाने वाला है, आनंद कौन ले रहा है? करने वाला आनंद नहीं देता है, जो उस आनंद को ले रहा है वो भोगेगा। मेरा व्यय हो रहा है, ये सारा इंतजाम मेरे व्यय के लिए, क्या पंडाल लगाया गया है, क्या बैंड किए गए हैं मेरे पिता ने, क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, उन सब का आनंद कौन ले रहा है? एक व्यक्ति ले रहा है। सरंजाम जुड़ाने में सैकड़ों लोग, सैकड़ों हाथ लगे, वरना तो ये पंडाल लगाने वाले को बहुत कर्मों का बंध होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रोजी रोटी कमानी है इसलिए पंडाल लगाया। आपका व्यय होता हो आप एंटरटेन करो, हमें क्या मतलब, हम तो लगा के चले जाएंगे। देखिएगा आप, आ रहा है समझ में? नहीं तो रोज पंडाल लगाने वाला तो इधर लगाता है, उधर गिराता है, उधर नया लगा देता है, उसको तो निरंतर कर्मों का बंध होगा, वो एंटरटेन नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, अपना काम कर रहा है, उसको उतने ही कर्म का बंध होगा। लेकिन फल इस सब का किसको भोगना पड़ेगा? जिसके निमित्त से किया गया है। मजा देखिएगा, करते अनेक हैं, भोगना पड़ता पूरा का पूरा एक अकेले को, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा शांत बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल गुड्डा गुड्डी जैसा बना हुआ, चुपचाप बैठा है, सेहरा लगाए हुए बैठा है कमरे में, हाँ बस आनंद, लेकिन सारा एक भी काम नहीं किया उसने कुछ भी, लेकिन सारे कामों का जो उसके निमित्त से हुए हैं सबका, क्योंकि उसके परिणाम, वो एक एक काम को देख रहा है, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, सब मेरे लिए, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कृत्य देखने में आता है, लेकिन देखना चाहिए हमें अपने भाव। मुझे कहना यह है, करते थोड़ा सा है फल बहुत ज्यादा भोगना पड़ता, कई बार करते बहुत ज्यादा है फल थोड़ा सा मिलता। जैसे उदाहरण अपन देख लें, करते तो थोड़ा सा है फल ज्यादा भोगना पड़ता। दिन भर में भैया जी बड़े शांत दिखाई पड़ते हैं, कुछ किसी से बोलते नहीं हैं, लेकिन दिन भर में एक आध वाक्य बोलते हैं, लेकिन इतना कड़ा वाक्य बोलते हैं कि दूसरे के मर्म भेद हो जाता और दूसरा अपना प्राणांत करने तैयार हो जाता है। कितना छोटा सा कार्य किया था, एक ही शब्द तो कहा था, लेकिन उस शब्द की वजह से अपने परिवारजनों से कहां तक हम तुम्हारी सेवा करें, वर्षों से बीमार हो तुम, इतना ही तो कहा था, किसी और से कहा था, लेकिन वो पेशेंट को सुनने में आ गया कि अब घर के लोग मेरी सेवा करते करते थक गए हैं, मुझे अब अपने जीवन को ही नष्ट कर लेना चाहिए, और तीन मंजिल की उस घर से एक दिन वो कूद करके नीचे गिर गया। ये किसके जिम्मे आया? कुछ भी तो नहीं कहा था मैंने तो जरा सा इतना ही कहा था कि इतने दिन हो गए कहां तक हम सेवा करें। अब कह रहे हो आप, लेकिन वह उतना सा आपका कृत्य इतना बड़ा फल दे करके चला गया उस व्यक्ति के मरण में, इसलिए 6 महीने का सूतक लगता है। क्यों लिखा ऐसा? किया तो थोड़ा ही सा था लेकिन फल इतना बड़ा। गुना की एक